रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई का परिणाम हुआ प्रकाशित। 61.81% परीक्षार्थी ग्रेड प्राप्त करने में हुए हैं सफल। राष्ट्रसंघ के विकास के लिए वित्त संबंधी सम्मेलन में सहभागी होने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कल करेंगे स्पेन के लिए प्रस्थान। विद्यालय शिक्षा विधेयक में निजी शैक्षिक संस्था संचालन संबंध में संसदीय समिति में हुई सहमति। और भारी बारिश के कारण पाकिस्तान में 7 लोगों की हुई मौत, 27 घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई का परिणाम सार्वजनिक किया है। परीक्षा में 61.81% परीक्षार्थी ग्रेड प्राप्त करने में सफल हुए हैं। आज सार्वजनिक परिणाम के अनुसार विक्रम संवत 2081 की एसईई परीक्षा में नियमित श्रेणी से भाग लेने वाले 4,38,896 परीक्षार्थियों में से 3.6 जीपीए से 4 जीपीए तक प्राप्त करने वाले 48,177 विद्यार्थी, 3.2 जीपीए से 3.6 जीपीए तक प्राप्त करने वाले 81,385 परीक्षार्थी और 2.8 जीपीए से 3.2 जीपीए तक प्राप्त करने वाले 89,124 विद्यार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार 2.4 जीपीए से 2.8 जीपीए तक प्राप्त करने वाले 48,479 विद्यार्थी, 2 जीपीए से 2.4 जीपीए तक प्राप्त करने वाले 4,126 विद्यार्थी और 1.6 से 2 जीपीए तक प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ महेश्वर शर्मा ने जानकारी दी कि 126 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 1,67,597 परीक्षार्थियों का परिणाम अवर्गीकृत रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के लिए वित्त से संबंधित 4th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कल स्पेन की यात्रा पर जा रहे हैं। स्पेन के सेविला में होने वाले इस सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ओली की यात्रा हो रही है। विकास के लिए वित्त सम्मेलन में विश्व के नेता, वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थाएं, वित्तीय और व्यापारिक संगठन, व्यवसायी, नागरिक समाज और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संबंधित प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ओली के प्रमुख सलाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल ने बताया कि वर्ष 2030 तक पूरा करने के संयुक्त राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ये मंच महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रधानमंत्री ओली की ये यात्रा हो रही है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ओली स्पेन के राजा फेलिप द्वितीय से शिष्टाचार भेंट करेंगे और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज के साथ वार्ता करेंगे। साथ ही वे विश्व के अन्य देशों के नेताओं के साथ साइडलाइन वार्ता भी करेंगे। ये सम्मेलन 16 से 19 आषाढ़ तक होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री ओली कल शाम कतर के दोहा होते हुए मैड्रिड जाएंगे और आषाढ़ 20 शुक्रवार को स्वदेश लौटेंगे। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। विद्यालय शिक्षा विधेयक पर संसदीय समिति में चर्चा अंतिम चरण में पहुंच गई है और निजी शैक्षिक संस्थानों के संचालन से संबंधित प्रावधानों पर सहमति बन गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की आज हुई बैठक में निजी विद्यालयों को सेवा उन्मुख, लोक कल्याणकारी और धीरे धीरे गैर लाभकारी बनाने संबंधी प्रावधान जोड़कर समिति के अध्यक्ष अमर बहादुर थापा ने निर्णय के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया। संघीय संसद की संसदीय सुनवाई समिति ने आज प्रस्तावित न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं के साथ चर्चा की है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित मेघराज पोखरेल, श्रीकांत पौडेल और शांति सिंह थापा के खिलाफ कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेल और श्रीकांत पौडेल के खिलाफ 2-2 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जबकि दूसरे प्रस्तावित न्यायाधीश शांति सिंह थापा के खिलाफ 1 शिकायत मिली थी। वहीं न्याय परिषद के सदस्य पद के लिए सिफारिश किए गए महेश कुमार नेपाल के खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। समिति ने अपनी प्रक्रिया से संबंधित मामले में एक शिकायतकर्ता के साथ भी चर्चा की। शिकायतकर्ताओं के साथ चर्चा पूरी करने के बाद समिति ने आगामी रविवार को सर्वोच्च अदालत के लिए प्रस्तावित न्यायाधीशों और न्याय परिषद सदस्य की संसदीय सुनवाई करने का निर्णय किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उपभोक्ता अदालत ने इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत के मामले में हिमाल हॉस्पिटल प्राली और इलाज में शामिल चिकित्सकों से करीब 1,45,00,000 रुपए का मुआवजा भरवाने का फैसला किया है। कल गुरुवार रामप्रसाद शर्मा, गहेंद्र राज रेग्मी और आनंद राज पोखरेल की साझा पीठ ने मुआवजे की रकम में 70% अस्पताल से और इलाज में शामिल चिकित्सक जयदेव यादव से 30% भरवाने का फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि हुमला जिला मुख्यालय सिमकोट कुछ ही दिनों में सड़क संजाल से जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री ओली ने आज सामाजिक संजाल पर लिखा है कि हुमला को सड़क संजाल में जोड़ने की 26 सालों की प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है। उन्होंने आगे लिखा है कि हुमला में सड़क पहुंचने के बाद नेपाल हिलसा नाके से पड़ोसी देश चीन के साथ भी जुड़ जाएगा। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि संविधान में मौजूद व्यवस्था के कारण किसी एक पार्टी का बहुमत ला पाना कठिन है। आज चितवन में नेपाली कांग्रेस चितवन द्वारा प्रजातंत्र सेनानी स्वर्गीय गौरी देवी प्रधान की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभापति देउवा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान की समावेशी और समानुपातिक व्यवस्था के कारण किसी एक दल को बहुमत प्राप्त हो सकने की स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने संयुक्त राष्ट्र संघीय क्षेत्रीय मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए नेपाल के डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों के विषय में विश्व समुदाय को जानकारी कराई। थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न सम्मेलन में नेपाल की ओर से मंत्री पौडेल ने बताया कि नागरिक स्वास्थ्य डेटा को एकीकृत करने के लिए नीतिगत स्तर पर निर्णय लेकर सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मातृभाषा पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों ने अपनी भाषा में पत्रकारिता करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करने की बात कही है। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान और नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज संघीय समिति के संयुक्त आयोजन में संचार माध्यम में मातृभाषा पत्रकारिता की स्थिति और चुनौतियां विषय पर एक संवाद कार्यक्रम में पत्रकारों ने ये बात कही। पत्रकारों ने बताया कि मातृभाषा में पत्रकारिता करने के लिए संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण का अभाव और सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने इन चुनौतियों को कम करने के लिए प्रतिष्ठान से विशेष पहल करने का आग्रह किया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल की संचालक समिति सदस्य अनिता गुरुंग ने कहा, रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन अब सरकारी माध्यम नहीं रहे बल्कि जनता के संचार माध्यम बन चुके हैं। मातृभाषा में प्रसारित हो रहे समाचारों और कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 28 स्थित बगही में आज ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि अन्य एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर पलटने से बगही निवासी 17 वर्षीय आकाश पटेल और 18 वर्षीय गोलू पटेल की मौके पर मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण अब तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 27 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अचानक आई भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण दुर्घटनाएं हुई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और कृषि भूमि भी प्रभावित हुई है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। पाकिस्तान मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में और अधिक बारिश की संभावना जताई है जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यह घटना इस साल मानसून सीजन में पाकिस्तान में आई प्राकृतिक आपदाओं की एक कड़ी है। पिछले साल भी भीषण बाढ़ से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई का परिणाम हुआ प्रकाशित। 61.81% परीक्षार्थी ग्रेड प्राप्त करने में हुए हैं सफल। राष्ट्रसंघ के विकास के लिए वित्त संबंधी सम्मेलन में सहभागी होने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कल करेंगे स्पेन के लिए प्रस्थान। विद्यालय शिक्षा विधेयक में निजी शैक्षिक संस्था संचालन संबंध में संसदीय समिति में हुई सहमति। और भारी बारिश के कारण पाकिस्तान में 7 लोगों की हुई मौत, 27 घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।